Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और इसका दूसरा अर्थ है नारायण, ये कंपन भी अर्थ होता है। अब आप दो तीन अर्थ हैं इसके, इसको थोड़ा संक्षेप में आप देखते जाए। यहां जो धातु है ना नचिकेता में, कंपन अर्थ में भी धातु है, और यहां न चिनोति माने न कंपयती इति, जो कंपित नहीं होता है। और दूसरा अर्थ स्राव भी है। जब हम बाहर के पदार्थों को देखते हैं ना, तो हम कंपित हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं, हम हिल जाते हैं। हिलते हैं कि नहीं? सही। जैसे आपने दूसरे का मकान देखा, और जैसे मकान देखा तो आप हिल जाते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत हिलते हैं। आप दूसरे की उन्नति आपने देख ली और उस समय हिल गए, आहा हमको मिल होती तो कितना अच्छा होता। तो बाहर के पदार्थ हमको विचलित कर देते हैं, हमारे मन को कंपित कर देते हैं, और कंपित होने के बाद फिर श्राव, ये श्राव भी अर्थ है। यहां तीनों अर्थ एक साथ लगा देंगे तो आपको सरल होगा समझने के लिए। चयन करना, चयन करने के बाद कंपित होना, और कंपित होने के बाद फिर बाहर से, भीतर से बाहर निकलना, ये क्रम से तीनों अर्थ लगा लीजिए। जब हमारी इंद्रियां बाहर के पदार्थों को देखती हैं तो क्या करती हैं? चयन करती हैं, बाहर के पदार्थों को भीतर करती हैं, और भीतर आने के बाद फिर हम अंदर से कंपित हो जाते हैं, और कंपित होने के बाद फिर भीतर से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, फिर हम बहिर्मुख हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको सूत्र कहा था, ये बाहर के पदार्थ हमको बहिर्मुख बना देते हैं, हमारे भीतर की वासना को जगाते हैं, हमारे इंद्रिय भाव को जगा देते हैं। बाहर के पदार्थ हमारे इंद्रिय भाव को जगाते हैं, ये बात अपने को समझनी है। जब हम, हमारे पास इंद्रियां हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होती कि हमारे पास इंद्रियां हैं, लेकिन बाहर के पदार्थ जब हम देखते हैं और हमारे भीतर की जब वासना जग जाती है तो क्या होता है? हमारा इंद्रिय भाव जग जाता है। उस समय हमारी इंद्रियां जगने लगती हैं, और वो इंद्रियां फिर मालूम होने लगती है हमारे पास इंद्रियां हैं, आंख खुल जाती है कि नहीं? आप बैठे हैं और जप कर रहे हैं, और उसी समय आपके किचन की सुगंध आ गई और नाक में पहुंच गई। आहा, क्या सुंदर है। अभी अभी मैं टीवी में देख रहा था, वो जगा रहे थे कुंभकर्ण को, कुंभकर्ण को जगा रहे थे। अरे क्या कुंभकर्ण, वो भाले चुभो रहे थे कान में, नाक में, हाँ बाले चुभो रहे थे, वो कुछ नहीं, घुर घुर अपना सो रहा था। और लेकिन जैसे उन्होंने भोजन, बड़े बड़े पात्र भर करके वहां भोजन लाया गया, और उसी सुगंध उसके नाक में पहुंची, और जैसे नाक में पहुंची तो उसकी नाक खिलने लगी। फिर ओहो आहा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फिर आंखें खोली, अरे ऐसे तो है, हम आंख बंद करके जप कर रहे हैं और उसी समय सुगंध आई तो कैसा लगता है? अब धीरे धीरे फिर अंदर से कंपित हो जाता है वो आदमी, और कंपित होने के बाद फिर आपकी इंद्रियां जगने लगती हैं, फिर आपकी वासना जग जाती है, और फिर आपके मुख में पानी आने लगता है। ये मुख में पानी आने का ही मतलब है आप अब तैयार हो गए, आप खाने के लिए तैयार हो गए। यही है चयन करना, भीतर से कंपित होना, और उसके बाद फिर स्रवित हो जाना, फिर बाहर के पदार्थों को ग्रहण करने के लिए उतावला हो जाना, यही तो है ना चयन का अर्थ। ये जीवात्मा का स्वभाव है। लेकिन बालक नचिकेता के जीवन में नारायण ये तीनों चीजें नहीं है। बालक नचिकेता दुनिया को भी देख लेते हैं लेकिन उनके अंदर कंपन नहीं, हाँ, और उसके बाद फिर वो बहिर्मुखता भी नहीं है, बाहर आना भी नहीं है, बस ठीक है, ये तीनों चीजें। और इसीलिए बालक नचिकेता उच्च कोटि के अधिकारी हैं, उच्च कोटि के अधिकारी हैं। तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के सारे लक्षण बालक नचिकेता में हैं। इसलिए कहते हैं तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, इतना प्रबलतम। और वो ऐसा प्रबलतम प्रज्ञा का धनी वेदांत का अधिकारी बालक नचिकेता उनके पास बैठे हैं। ये बात भी है यहाँ, तम ह नचिकेता नाम पुत्र आस, ऐसा श्रुति कह रही है ना, तो ऐसा लगता है कि श्रुति कहना चाहती है उषण हवय वाजस्रव सह, उनके पिता बड़े लोभी हैं और सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं और वो कर्म करते समय वैगुण्य का संपादन कर रहे हैं, कुछ कमियां रह गई लेकिन चिंता की बात नहीं, नचिकेता नाम पुत्र आस, समझ गए ना, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, नचिकेता जैसा उनका बेटा है, बेटा माने वो बचा लेगा। आज श्रुति संकेत कर रही है, अब ऐसे पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतना उच्च कोटि का पुत्र है कि अपने पिता को गिरते हुए पिता को भी बचा लेगा। हाँ, ऐसा कई बार होता है, अरे उसकी कोई चिंता नहीं क्योंकि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। हाँ, उसकी कोई चिंता नहीं उसका पति बहुत अच्छा है। हाँ, उसकी कोई चिंता नहीं उसका दोस्त बहुत अच्छा है। इसलिए जहां पर भी नारायण आप में पुण्य है, आपके साथी ऐसे होंगे आपकी मदद करने के लिए, आपका बेटा ऐसा होगा कि आप गिरते हुए बाप को भी बचा लेगा, बाप इतना पुण्यशाली होगा कि गिरते हुए बच्चे को भी उठा लेगा। मेरे पास ऐसे दो कुछ केस हैं, बाप बिल्कुल नास्तिक हैं, बिल्कुल नास्तिक, न मंदिर में आता है और न महात्मा के पास आता है, बिल्कुल नास्तिक है, और यहां तक कि वो रोकता भी है, क्या जाना है मंदिर, शराब पीता है, खूब मस्ती करता है, उसका छोटा सा बच्चा, और वो मंदिर में आया है, और मंदिर में आने के बाद वो मुझे देखता है, ये कपड़ा बंधा हुआ है, पहले तो इसमें गाती बांधता था ना, वो गाती बंधी है, अरे ये क्या, ये किस लोक से आया हुआ आदमी है, छोटा सा बच्चा देखता है ये क्या है, ये रंग ये रूप, और वो बहुत मस्त उसको लगता है ये क्या चीज, उत्सुकता जगती है, और अपने माँ को पूछते हैं मम्मी ये कौन है, तो मम्मी मजबूर बोलते चलो यहां से चलो, ये बाबा है पकड़ के ले जाएगा। ये सत्य घटना है, दो तीन केस अपने पास है, उसको मम्मी बोलती कि चलो चलो बाबा है, बाबा है, नजर बचाती हूँ मैं, देख रहा था नजर बचाती हूँ, बाबा है पकड़ के ले जाएगा, वो बच्चा बोलता है पकड़ के क्यों ले जाता है मम्मी, तो मम्मी डांटती है तो, लेकिन बार बार पूछता है कि मम्मी पकड़ के क्यों ले जाता है, फिर हमको क्या करता है वो सब पूछता है वो। और वो दूसरे दिन आग्रह करता है कि मम्मी चलो गीता भवन, वो बाबा है ना, और वो देखते हैं हम लोग कैसा है बाबा, और रोता है बच्चा, और वो रोते हुए अपने माँ को ले आता है, और दूसरे दिन दूर से वो दिखाती है, वो देखो बाबा है, वो बच्चा बोलता है मम्मी चलो वहां चलो, और वो बोलते नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, पता नहीं वहां क्या है क्या चलता है, उनके कमरे में कौन आते हैं हमको पता नहीं, हम कभी जाते नहीं, लेकिन वो बच्चा बोलता है कि नहीं आप चलो मम्मी, अंगुली पकड़ के खींचता है, और उसके बाद वो उसकी मम्मी दूसरे को पूछती है कि ये महात्मा कौन है, क्योंकि मेरा बेटा बोल रहा है कि उनके पास चलो, और लोग बोलते कि नहीं बहुत अच्छे हैं वृंदावन से आए साधु और मिलने के लिए जा सकते हैं, और वो डरती डरती वो अपने बच्चे को ले आती है, और आश्चर्य की बात वो बच्चा आता है और आके चुपचाप गोद में बैठ जाता है, और इतना प्रेम होता है उसका, इतना प्रेम होता है कि रात्रि के समय जग करके बोलता है अपने मम्मी को कि मम्मी स्वामी जी के पास ले चलो, और उसके पिता को मालूम पड़ता है कि ये बवाल क्या है। और वो बवाल देखने के लिए आता है गीता भवन, वो कि देखने के लिए कि मेरे बच्चे को जिसने इतना पागल बना दिया वो है कौन, वो थोड़ा खबर तो लूं मैं। और उसके बाद फिर वो भी चेला बन जाता है, वृंदावन आता है, क्या भगत बन जाता है, देखो ये पुण्य का प्रभाव, बच्चे के पुण्य का प्रभाव। आज इसीलिए कहते हैं अरे इसकी कोई चिंता नहीं बेटा बहुत अच्छा है, इसलिए आप अच्छे बनना, और आप रियल में अच्छे बनना तो आपके आसपास के लोग तो अपने ऐसे करते जाएंगे बस, लेकिन बनना आपको है। इसलिए श्रुति कहती है उनके पिता ऐसे हैं लोभी हैं लेकिन उसकी चिंता नहीं, नचिकेता जैसा उनका बेटा है। फिर क्या हुआ तो श्रुति आगे कहती है, तम कुमार संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा अविवेश सो अमन्यता। स कुमार संतम, अब श्रुति कह रहे हैं, अब वो कुमार कैसे था, नचिकेता कैसे था, कुमार संतम छोटा होता हुआ। अब ये कुमार क्रीड़ा अर्थ में क्रीड़ायाम धातु है और ये कुमार क्रीड़ायाम धातु से कुमार शब्द बनता है और कुमार शब्द का अर्थ होता है खेलने कूदने की उम्र। कुमार शब्द का अर्थ होता है कुत्सितम, कु माने कुत्सितम, मार माने कामादि, यस्य स कुमार, जिसके जीवन में काम क्रोध लोभ आदि मनोवृत्तियां अभी उदित ही नहीं हुई है। कुमार का अर्थ यही है, कुमारिका का अर्थ यही है, जहां कामादि तिरस्कृत है, अभी प्रकट नहीं है, है ही नहीं, ऐसा बालक नचिकेता कुमार संतम माने छोटा होता हुआ भी, कुमार होता हुआ भी, उन्होंने देखा दक्षिणासु नियमानासु। गायें दक्षिणा के लिए लाई जा रही हैं और उन्होंने देख करके श्रद्धा अविवेशा, श्रद्धा का उनमें आवेश आ गया। अब श्रुति बहुत अच्छे शब्द का चयन कर रही है क्योंकि श्रुति सूत्रात्मक है, उसको व्याख्यान नहीं करना है और सूत्रात्मक उनको बहुत गहरी गहरी बातें कहना है, भाव व्यक्त करना है। जब उन्होंने दक्षिणा के लिए लाई गई गायों को देखा तो कहते श्रद्धा आविवेशा, उसमें श्रद्धा का आवेश आ गया। यहां श्रुति क्या कहती, श्रद्धा का आवेश आ गया, आवेश का मतलब समझते हैं ना। यहां श्रुति ये नहीं कहती कि उनमें श्रद्धा जगी, ऐसा भी नहीं कह रहे, आवेश आ गया, आवेश आवेश, और आवेश में का मतलब होता है पराधीनता, जैसे आपके अंदर भूत का आवेश आ जाए। कभी आपने देखा है किसी में भूत का आवेश आया, पहले तो आपको यही नहीं मालूम है भूत होता होगा कि नहीं, मान लो कल्पना करो, अब ये विषय मेरा नहीं है ना, होता है कि नहीं ये तो विषय मेरा नहीं है, जब प्रसंग आएगा तो कभी बता देंगे। आप श्रवण करते इसमें आवेश आ गया है और जब आवेश आता है ना तो उस समय उस आवेश में आप आधीन हो जाते कि पराधीन हो जाते, आप स्वतंत्र रहते कि आप पराधीन हो जाते, उस समय आप पराधीन हो जाते, आवेश आ गया, आप में आवेश आ गया है, आप उस आवेश में आपका नियंत्रण आप पर नहीं है, आपका नियंत्रण आप पर नहीं, और आपका नियंत्रण यदि आप पर है तो उसको आवेश बोलेंगे क्या, उसको आवेश कहां से बोलेंगे। तो यहां पर श्रुति कहती है बालक नचिकेता में श्रद्धा का क्या आया, आवेश आया, आवेश। हम लोगों में भी श्रद्धा है, देखो कैसी श्रद्धा होती है हम लोगों की। जैसे आप भगवान के मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद आपके अंदर श्रद्धा जगी कि मैं मंदिर में जाके दक्षिणा चढ़ाऊं, और उस समय फिर कैसे चढ़ाते हैं, आप जेब में हाथ डालते इधर 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 इधर, मिल रहा है कि नहीं, और उसके बाद आप देखते कि सबसे छोटा नोट कौन सा है, आप क्या करते हैं, सबसे एक बार यहां कहां की बात है, घाटकोपर की बात है, एक किसी माई ने मुझे दक्षिणा चढ़ाई, जैसे प्रवचन खत्म हुआ तो जैसे मैं ऊपर जाने लगा आई और उन्होंने दक्षिणा चढ़ाई, मैंने देखा नोट बहुत वजनदार लगा, मैंने सोचा कि बहुत नोट वजनदार लग रहा, बात क्या है, देखा 1000 का नोट, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, ये इतना तो कभी चढ़ाती नहीं और 1000 चढ़ाया, बोले गड़बड़ कुछ है। मैंने सोचा कि ये गड़बड़ी का पैसा और ये ठीक नहीं है और ये गड़बड़ी ठीक कर लेनी चाहिए, फिर मैं रुक गया और मैं दूसरे से बातचीत करने लगा, मैं जानना चाहता था कि ये सचमुच दिया है कि गलती से आया है, और वो माई भी खड़ी थी और वो भी प्रसन्न थी, उन्होंने मुझे दक्षिणा दी थी, तो मैंने धीरे धीरे वो नोट इधर देखते देखते खोलते खोलते ऐसे दिखाने लगा उसको कि देखो ये नोट आपने चढ़ाया है, और उसने देखा 1000 का नोट, और देखने के बाद इतनी घबरा गई वो, और चट से उन्होंने थोड़ा साइड होके पर्स खोल के देखा, ओ ये नोट मेरा है, चढ़ाना था 10 का और चढ़ गया। मैं खुश हुआ, हाँ स्रोत का पता चल गया। और फिर मैं वो नोट ऐसे वैसे मतलब नॉर्मल से मैं देख नहीं रहा हूं, अभी तक मुझे मालूम ही नहीं कि 10 का है कि 100 का है कि 1000 का है। तो उसके बाद उन्होंने अपने साइड गई और 10 रुपए का नोट उन्होंने निकाला और मुझे बोलने लगी, महाराज आपका हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। और फिर मैंने यूं हाथ किया तो उन्होंने धीरे से चट से उठा लिया और उन्होंने फिर 10 का नोट थमा दिया। मैं बहुत खुश हो गया, आहा बोझ हल्का हो गया। आप जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आप श्रद्धा से भगवान के मंदिर में चढ़ाते हैं, लेकिन आवेश में रहते हैं क्या? देखो आवेश का मतलब समझ मालूम है, आप आवेश में जब होते ना तो आप अपने आप को लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप श्रवण करते ना, अशोक सम्राट ने यज्ञ किया और यज्ञ करते समय वो दान करने लगे और वो श्रद्धा आवेश है। और ऐसा श्रद्धा कि नारायण जो भी हाथ में आए उसको अरे दान का लुटा रहे और सब कुछ लुटा दिया और अंत में फिर सारा खजाना खाली, फिर जो भी गहने थे वो भी उतार के बांट दिए और उसके बाद फिर अपने कपड़े भी उतार के देने लगे। कोई आया और अब सारी चीजें खत्म, उठा उनके बहन ने रोका, रुको भैया रुको, कम से कम वस्त्र तो रखो। इसको बोलते श्रद्धा आवेश। शास्त्र की श्रद्धा यदि आपके अंदर है तो आवेश होता है उसमें, उस समय आपका विवेक खो जाता है। श्रद्धा का आवेश यदि व्यक्ति में होना, शास्त्र पर श्रद्धा है, भगवान पर श्रद्धा है, गुरु पर श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के आवेश में व्यक्ति फिर कुछ भी कर देता है। ये श्रद्धा का प्रभाव। आप श्रद्धा में जब होते हैं ना, आवेश में होते हैं, तो आपका जो शास्त्र है ना आप वही करेंगे, आप मर मिटने के लिए तैयार होंगे, श्रद्धा का आवेश आ गया। आप यहां बालक नचिकेता के मन पर श्रद्धा का आवेश प्रकट हो गया और उसके बाद फिर नचिकेता का मन नचिकेता के हाथ में है कि नहीं? अब नहीं, अब बालक नचिकेता पराधीन हो गया है। सत्य का आवेश, ये श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा है ना सत्य, परम पूज्य महाराज जी कहते हैं श्रद्धा में सत्य है, सत्य और धा मने बुद्धि, जो सत्य की जो बुद्धि है ना उसी को बोलते हैं श्रद्धा। सत्य का आवेश हो गया आज बालक नचिकेता के मन में, सत्य का क्या हुआ है? आवेश। और अब वो उसके अधीन हो गए, उस सत्य के अधीन हो गए, आवेश आ गया और उसके बाद फिर वो सोचने लगे मेरे पिताजी अनुचित गायों का दान कर रहे हैं और ये अनुचित गायों का दान अच्छा नहीं, मेरे लिए गाय बचा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब वो अधीन नहीं है। और नारायण अधीन जब आदमी नहीं होता है तो वो किसी न किसी प्रकार अपने भाव को प्रकट करने के लिए उतावला हो जाता है। श्रद्धा अविवेश सो अमन्यता, ये आवेश का प्रभाव। आवेश आविष्कृत हुआ, आवेश विचारों में परिष्कृत हुआ और वो सोचने लगे। यहां तीनों चीजें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ये तीनों चीजें बालक नचिकेता में दिखाई देती। श्रद्धावान ये श्रद्धा, आविवेश श्रद्धा का आवेश हुआ और श्रद्धा के आवेश के बाद फिर तत्परता। तत्परता का मतलब होता है श्रद्धा आपके अंदर है और वो श्रद्धा यदि आपके जीवन की तत्परता नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। आपके अंदर श्रद्धा है और तत्पर हो गए और चलो हम पूजा करेंगे, चलो हम सत्संग करेंगे, ये क्रिया में व्यक्त होती है। श्रद्धा आपकी जब क्रिया में व्यक्त होती है ना उसको तत्परता बोलते हैं। श्रद्धा जब आपकी आचरण बन जाते हैं ना तो उस आचरण को ही तत्परता बोलते हैं। आप में श्रद्धा बनी और उसके बाद जब शांति से बैठे हैं, आप सो रहे हैं, तो तत्परता बनी नहीं, श्रद्धा कहां से आई? इसलिए आज यहां नारायण तत्पर हो गए, बालक नचिकेता तत्पर हो गए और वो तत्परता वो सोचने में प्रकट हुए। सो अमन्यता। और कुमार संतम में कुमार शब्द का द्योतन उनकी इंद्रिय संयम का द्योतन, माने बालक में श्रद्धा भी है, इंद्रिय संयम भी है और तत्परता भी, ये तीनों चीजें बराबर हैं बालक ने चिकित्सा में। सो अमन्यता, वो सोचने लगे। अब वो क्या सोच रहे हैं? पीतोदका जगदत्रणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नामते लोका तांस तांस गच्छति ताददत। अब वो कितनी उच्च कोटि की बात सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, आवेश में सोच रहे हैं। आप सोचते समय इन्होंने होश खो दिया है और वो सारा शास्त्र उनके जीवन में उतरा। और आश्चर्य की बात, ये सारी चीजें अपने पिता से सुनी है। आज श्रद्धा आस्तिक्य उनके मन में जो निर्मित हुई, और ये श्रद्धा उन्होंने कहां से सीखी? अपने ही पिता से, अपने ही पिता से सीखी। श्रद्धा क्या है, शास्त्र क्या है, अपने पिता से ही सुना था उन्होंने कि बेटा दान भी करना तो सही करना। लेकिन आज बालक नचिकेता सोच रहे हैं, ये आदेश तो मुझे पिता ने दिया था और आज पिता ही क्या कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि जहां पर नारायण वासना प्रकट होती है ना, वो हमारे श्रद्धा को खा जाती है। वासना हमारे श्रद्धा को खा जाती है। आपके अंदर श्रद्धा है लेकिन उसके साथ साथ वासना भी है, तो वो वासना आपके श्रद्धा को समाप्त कर देती है। फिर अब यहां पर भी श्रद्धा है, शास्त्र का ज्ञान है, उद्दालक के जीवन में सारी चीजें हैं, लेकिन पुत्र मोह है, वासना है। और उस वासना के कारण शास्त्र की श्रद्धा और उस शास्त्र का ज्ञान भी नारायण वहां खो चुका है। माने उपदेश तो किया उन्होंने अपने पुत्र को, लेकिन वो स्वयं अपने जीवन में आचरण नहीं कर पाए। इसलिए कई बार जो चीज छोटे बच्चों में आती है ना, वो बड़े बड़े में नहीं आती। ऐसा होता है कई बार बच्चे भी बहुत अद्भुत बात बोल देते हैं जो आपके दिमाग में कभी नहीं आ सकती। एक सामान्य आदमी भी कई बार बहुत ऊंची बात सोच जाता है, बहुत ऊंची बात कर जाता है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती कि वो छोटा है। जो बड़ों के दिमाग में नहीं आती वो बात छोटों के दिमाग में आ जाती है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज के पास ही कोई ब्राह्मण आया रात्रि के समय और उन्होंने दान मांगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने सोचा मध्य रात्रि का समय, कोष बंद है, और उन्होंने कहा कि भैया चलो कल आप सुबह आना, आप जितना मांग रहे उसे दुगना देंगे हम। जब ब्राह्मण लौटने लगा, वहां राज दरबार में घंटा रखा रहता था, बड़ा भारी ढोल, और कोई अद्भुत आश्चर्य की घटना घटती राज दरबार में, कोई खुशी हंसी की या आश्चर्य की, तो ढोल बजाया जाता था, लोगों को मालूम पड़ता कि कोई घटना घट गई। भीम उठे वहां से और उठ करके रात में जोर जोर से ढोल बजाने लगे। वो अब वो भीम बजा रहे थे बड़ा जोर जोर से। युधिष्ठिर ने रोका, बोले कौन ढोल बजा रहा है? लोगों ने कहा वो भीम दादा बजा रहे हैं। अरे बोले बुला बुला, बोले क्या बात क्या है, कौन सी आश्चर्य घटना घटी, ये तो अद्भुत, ये ढोल ऐसे थोड़ी बजता है, बुला लिया। और युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा भैया तुमने ढोल क्यों बजाया, कारण क्या था? बोले मैं आज बहुत खुश हूं। बोले खुश किस बात से? अरे बोले आज मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि युधिष्ठिर राजा के मन में इतना पूर्ण विश्वास है कि कल तक जीवित बचने वाले हैं। बोले बाबू बोल क्या रहे हो तुम, आपने उस ब्राह्मण को बोला कि कल सुबह आके दान ले जाओ, इसका मतलब कि आपको भरोसा है कि आप कल तक जीवित रहेंगे। बोले इतनी आश्चर्य की घटना। बात सही थी। वो भीम ने समझाया भैया क्या आपको भरोसा है कि कल तक आप कल तक रहेंगे, और क्या ये भरोसा है कि वो लेने वाला कल तक ब्राह्मण रहेगा? क्या आपको भरोसा है कि आप रहेंगे ब्राह्मण भी रहेगा लेकिन देने के लिए ये राज्य और धन आपके पास कल तक रहेगा, ये मालूम है? इसका कोई भरोसा नहीं आप चले जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं वो ब्राह्मण चला जाए लेने वाला, इसका भी कोई भरोसा नहीं ये धन ही चला जाए राज्य चला जाए, क्योंकि आपको मालूम है कितने बार राज्य आया और आपको कितने बार आपका राज्य गया, आपको वन वन भटकना पड़ा, अभी भी आपको सत्य का पता नहीं। आंखें खोली, युधिष्ठिर जी महाराज ने रोका उस ब्राह्मण देव, भैया आ जाओ, बोले अब भी दरवाजा खोलो, कोष खोलो, आज जितना है चाहे उतना आप दान कर। जो युधिष्ठिर जी के मन में बात नहीं आई वो भीम के मन में आ गई। आज यहां उद्दालक के एक ऋषि के मन में बात नहीं आई और वो बात किसके मन में आ रही है? नचिकेता के। इसलिए आपके आसपास आपके पोते बच्चे होंगे ना, आप उसका आदर करो, वो क्या बोल रहे हैं। सत्य का साक्षात्कार बच्चों में ज्यादा होता है, बड़े ही लोग उसको झूठ सिखाते हैं, हम लोग उसको झूठ सिखाते हैं। एक बार एक ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा था, मुझे बड़ी हंसी आई। उसके बाद पूरा परिवार दोस्त जैसा हो गया, जैन फैमिली थी, एक छोटा सा बालक था, टीटी आया, टीटी, वो टिकट चेक कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि इस बच्चे का टिकट, उन्होंने कहा कि ये इतनी उम्र का है, कितनी उम्र तक, 11 साल तक नहीं लेते हैं, 11। तो उन्होंने उस बच्चे को बताया कि इतनी उम्र है इसलिए टिकट नहीं लिया। तो बच्चा ही बोल पड़ा, मम्मी मेरी उम्र तो 12 साल है और आप टीटी को इतना कम क्यों बता रहे हो? टीटी के सामने बोला, टीटी के ही सामने बोला उसने। ओ चट्टा मार, उसने चट से चाटा मारा, चुप। अरे बोले चुप क्यों? बोले उम्र मेरी 12 साल है। और उसको बोला अंकल, अंकल मम्मी झूठ बोल रही, मेरी 12 साल की उम्र है। वो टीटी बड़ा प्रसन्न हो गया, नजदीक आया, फिर उसके गाल में थपथपाया, बोले बेटा तुम्हारी उम्र 12 साल है मैं समझता हूं, लेकिन तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, इसलिए तुमको हम टिकट नहीं पूछेंगे, ले जाओ। बालक नचिकेता का जीवन बड़ा सुंदर है। शेष विषय हम कल करेंगे, आज प्रवचन को ही विराम देते हैं। 2 मिनट के लिए आप सीधे बैठ जाएं, भगवान का नाम जप करेंगे। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।